पूज्य परम आदरणीय त्रिदंडी स्वामी जी, श्री भक्ति वेदांत नारायण स्वामी जी महाराज के चरणों में वंदन। डॉक्टर मधु जी और उनके परिवार वालों के चरणों में वंदन।
हरि का कभी न दिल से भुलाना चलती है सांस जब तक हरि गुणगाना नाम हरि का कभी न दिल से भुलाना सांस जब तक हरि गुणगाना रे।
शांति न मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम माला करना छोड़ दें. जो भाव और जो ध्यान ईश्वर के साथ होना चाहिए वो हमारे में थोड़ा कम लगता है, क्योंकि इसलिए ही तो हम स्वामी जी के शरण में आए हुए हैं कि बिल्कुल मैकेनिकल हमारा छूट के थोड़ा ध्यान से हम ईश्वर की माला जपें. माला फेर के भी माला फेर के भी मन को चोट न लगी तो फिर क्यों माला फेर के भी मन को चोट न लगी तो फिर क्यों माला फेर. माला फेर के भी ज्योत से ज्योत न जगी तो फिर क्यों माला फेर. तू तो गिन गिन माला फेरे हैं, तू तो गिन गिन माला फेरे हैं, तेरे मन को माया घेरे हैं, तेरे मन को माया घेरे हैं. माला फेर के भी माला फेर के भी मन को शांति न मिली तो फिर क्यों माला फेर. तू तो गिन गिन राम को पुकारता है, तू तो गिन गिन राम को पुकारता है, तेरा मनवा चहुं ओर घूमता है, तेरा मनवा चहुं ओर घूमता है. माला फेर के भी माला फेर के भी तार से तार न जुड़ी तो फिर क्यों माला फेर. माला फेर फेर माला तेरी टूट गई, माला फेर फेर माला तेरी टूट गई, तेरी सांसों वाली डोरी भी टूट रही, तेरी सांसों वाली डोरी भी टूट रही. बाहर भक्ति पर अंदर वाली खोट न मिटी तो फिर क्यों माला फेर. माला फेर के भी मन को चोट न लगी तो फिर क्यों माला फेर. माला फेर के भी ज्योत से ज्योत न जगी तो फिर क्यों माला फेर. अरे तू फिर क्यों माला फेर, फिर क्यों माला फेर. ओम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे.
बहन खंडेलवाल और जिस सत्संगियों ने ये इधर आयोजन किया उनके लिए मैं उनके प्रति भी आभार और धन्यवाद देता हूं. ये प्रेमपुरी जब बना उनके लिए पहले प्रेम कुटीर था और अभी भी चलता है मरिंद्राई के ऊपर। उधर भी पूज्य भक्ति वेदांता महाराज जी पधारे थे, 3 महीना उधर विराजे थे और उसके बाद एयरपोर्ट गए थे। उनके बाद भी बहुत सारे संतों का लाभ हमें हमेशा मिलता है। मुझे तो महाराज जी का प्रवचन का सुनने का थोड़ा सौभाग्य मिला।
अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणान्तिके।
अभी हमारे व्यवस्थापक महोदय ने 2 शब्द कहा, बहुत ही सुंदर। सत्संग भवन इसी प्रकार से होना चाहिए, अपने विचारों को भी व्यक्त करने के लिए पूरी छूट हो, सबको अपने विचारों को भी व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो मैंने कल भी इस सत्संग भवन की नींव डालने वाले, इसकी प्रेरणा देने वाले, इसको करने वाले सभी महोदयों के प्रति मैंने धन्यवाद ज्ञापन किया था। आज मैं अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कथित श्रीमद् भागवत के कुछ प्रसंग का मैं वर्णन करने की चेष्टा करूंगा। यह भागवत बुद्धि से, टीका से या अपनी प्रचेष्टा से समझ में नहीं आती। ये भागवत स्वयं कृष्ण का स्वरूप है, किसको यदि कृपा करा कर जना दे से ही जाने जेहु देहु जनाई। वो भगवान जिसको जना देते हैं वही उनको समझ सकता है, वही उनको जान सकता है। इसलिए मैं सुखदेव गोस्वामी के चरणों में मैं कोटि कोटि बार आंतरिक श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करते हुए मैं कुछ वर्णन करने का प्रयास करूंगा। कल हमने संक्षेप में श्रीमद् भागवत का उद्देश्य, भागवत का गूढ़ रहस्य क्या है, इसके संबंध में कुछ कुछ बतलाया था। मैंने भागवत का क्या वैशिष्ट्य है और शास्त्रों से, वेदों से, उपनिषदों से, गीता इत्यादि से क्या वैशिष्ट्य है, इसके संबंध में हमने बतलाया था। व्यास जी ने महाभारत में गीता रूपी रत्न को दान किया, वही श्रीमद् भागवत के गीता के प्रवक्ता श्री व्यास जी व्यास जी ने अंत में अपनी अंतिम कृति श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत किया जगत के सामने। उन्होंने कहा गीता जहां पर समाप्त होती है श्रीमद् भागवत वहां से प्रारंभ होता है। गीता आधार भूमि है, यदि आधार न रहे, नींव न रहे पक्की, तो बिल्डिंग नहीं बन सकती, वो गिर करके चकनाचूर हो जाएगी। इसलिए कंक से भी अधिक बेसिस, हमारी भारतीय संस्कृति का बेसिस ये गीता है। उस गीता के ऊपर में प्रेम के किसको कहते हैं ये बतलाने की चेष्टा की गई है। मैं संसारिक विषयों में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तो भी हमने सुना है और जहां तक कुछ देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, मैं देखता हूं कि विज्ञान ने बहुत बड़ी ऊंची छलांग लगाई। ऐसी छलांग लगाई, सारे जगत को एक मुट्ठी में बांध दिया। जो बहुत दूर के थे बहुत निकट हो गए। सुनते हैं कि ध्वनि से भी तेज चलने वाली वायुवाने इत्यादि निकली और समय की गति से भी तेज एक जगह से दूसरी जगह में एक पृथ्वी के छोर से लेकर दूसरी पृथ्वी के छोर तक उस व्यक्ति को पहुंचा देती हैं। संचार की ऐसी व्यवस्था की, कहीं इंग्लैंड में कुछ हो रहा है और कोई वक्ता बोल रहा है, क्रिकेट खेल हो रही है उसके संबंध में लोग बोल रहे हैं और यहां पर घर बैठे चुपचाप सब कुछ देख लीजिए। ऐसे जगत को मानो ऐसा एकत्र करके मुट्ठी में कर दिया, सब लोग एक हो गए। पृथ्वी बहुत छोटी हो गई, विश्व बहुत छोटा आयतन का हो गया। किंतु इसका एक दूसरा पहलू हुई है, इसका यह पहलू, पहला तो यह देखो किसी का हृदय यदि गड़बड़ हो गया दूसरा हृदय लेकर के प्रत्यारोपण कर लो, दिमाग किसी का सड़ गया दूसरा दिमाग लगा लो, रसोई घर के एक छोटी कोने से लेकर विज्ञान के बहुत क्षेत्र में इसने बड़ी उन्नति की, कमाल किया, आश्चर्य लगता है। किंतु इसका दूसरा पहलू ये, शरीर की भूख इसने बढ़ाई विज्ञान ने, आत्मा के गुण सारे विनष्ट हो गए। सबसे जो प्यारा चीज, जो संपत्ति मनुष्य की थी, जीव जंतु प्राणी सबके जो मूल संपत्ति थी वो था प्रेम, वह प्रेम अंतरहित होने लग गया, न जाने कहां उड़ने लगा। ये सब उन्नति हुई, वैभव खूब बढ़ा, सब कुछ हुआ, किंतु अब पहले जैसा राम और सीता में जैसा प्रेम था, जैसे गोपियों और कृष्ण में प्रेम था, जैसे आज से पहले 50 वर्ष की बात कहता हूं, जिस समय हम लोगों ने घर छोड़ा उस समय भी देखा पति और पत्नी में अगाध प्रेम, भाई और भाइयों में प्रेम, पिता और पुत्र में प्रीति, पड़ोसों के साथ में प्रीति। किंतु बड़े जोर से जो छलांग लाई गई विश्व विज्ञान ने, प्रेम को छोड़ दिया बहुत नीचे, वो प्रेम टूट गया। कलकत्ते में, बंबई में, दिल्ली में हम लोग जाते हैं, देखते हैं लोगों की इतनी भीड़ रास्ते में निकलना बराबर मुश्किल है, शरीर से शरीर रगड़ता है, और उसमें एक आदमी भी गिर जाए किसी की सहानुभूति नहीं जो उसे उठा ले। एक फ्लैट में रहने वाले में एक को घर में आदमी मर रहा है और दूसरे घर में विवाह हो रहा है, कोई सहानुभूति पहचानता नहीं जिसे फ्लैट में कौन है। धीरे धीरे प्रेम लुप्त होता चला गया। अभी कुछ प्रेम देखा जाता है कहीं कहीं, कुछ दिनों के बाद में ये प्रेम भी लुप्त होने वाला है यदि विज्ञान और उन्नति करेगा। और यदि विज्ञान ने उन्नति करके आत्मा का डिस्कवर किया, जे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यदि ये छलांग लगाई और किसी योग्य संतों का संग उनको मिल गया, तो फिर से प्रेम का प्रादुर्भाव हो सकता है। आज स्थिति, समस्या, प्रॉब्लम इस प्रेम की है। प्रेम बहुत कम दिखने में मिलता है। जहां पर पति का बैंक बैलेंस अलग हो, पुत्र का अलग हो, पुत्र वधु का अलग हो, बेटी बेटियों का अलग हो, वहां पर एक दूसरे को विश्वास नहीं, वहां पर प्रेम कहां से आएगा? प्रेम तो वहां रहेगा जब एक तरह से फुटबॉल राम ने गेंद उछाली भरत के तरफ में, ये राज्य नहीं मेरा नहीं तुम्हारा, और भरत ने वो फिर फुटबॉल दिया राम के तरफ में, कहे नहीं ये राज्य मेरा नहीं तुम्हारा, इस पे प्रेम रह सकता है। इसलिए प्रेम की समस्या है। अब 5000 वर्ष पहले, अभी 500 वर्ष पहले चले, जगत में कृष्ण पैदा हुए चैतन्य महापुरुष के रूप में, राधा जी का भाव लिया, देखा जे जगत में किसी चीज की कमी नहीं, सब चीज तो ठीक चल रहा है, प्रेम का अभाव हो रहा है, प्रेम की समस्या है। इसलिए वो जब पूरी जगन्नाथपुरी से जब वृंदावन आ रहे हैं, वहां पर भालू, बाघ, सांप, हिरण, हाथी मत वाले सभी एक साथ में महाप्रभु जी के पीछे पीछे डोल रहे हैं, और महाप्रभु हाथ उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे हैं, और उनके पीछे में बाघ हिरण का मुख चाटता हुआ बड़े प्रेम के साथ में एक साथ में चल रहा, वो भी उच्चारण कर रहा है हरि बोल हरि बोल। उन्होंने जीव मात्र को छोटा बड़ा नहीं समझकर सबको प्रेम दान करने की चेष्टा की, जगाई मधाई जैसे पियक्कड़ को भी समस्त धर्म से विहीन उस व्यक्ति को उसे गले लगाया, और वो भी हरि बोल बोलने लग गया, वो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो लोग भी बोलने लगे, आंखों में आंसू सबके भर आए। अभी बेटी ने बहुत सुंदर एक गान किया, बहुत ही अलबेला, माला करते हैं गिन गिन करके, और कृष्ण को भूल जाते हैं हृदय से, मन की माला टूट जाती है, माला टूट जाती है, ठीक कह रहे हैं। यदि कृष्ण नाम कर रहे हैं और आंखों से आंसुओं की अविरल धारा प्रवाहित नहीं होती, हृदय द्रवित नहीं हो जाता, तो समझो कि हमारे बहुत जन्म जन्मों के अभी अपराध हैं, अभी कृष्ण नाम नहीं आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु की बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं, उनका जीवन ही प्रेममय है, उनका स्वरूप ही प्रेममय है, उनकी शिक्षाएं प्रेममय हैं, इसलिए प्रेम की शिक्षा उन्होंने दी। उन्होंने हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जैन बुद्ध ये सब का विचार नहीं किया, हरि का भजा सो हरि का, बस ये देखा। हम आत्मा हैं, शरीर से हम भेद की कल्पना करते हैं, हम हिंदू हैं मुसलमान हैं, किंतु देखिए एक चीज सबके जीवन में, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग गधा घोड़ा सूकर भी हो, तीर्ण पतंग भी हो, प्रेम का किसी न किसी रूप में उसमें जरूर कुछ पोटेंसी रहेगी ही, ये कभी नहीं उड़ सकती। जैसे एक सुअर भी अपने बच्चे को प्यार करती है, यदि सुकरी को कहीं ले जाना है, सुकर के बच्चे को गोदी में उठा करके इधर तो चलो देखो, उसके पीछे पीछे भगेगी। गैया अपने बछड़े को प्यार करती, कितनी प्यार करती है, स्कूल कॉलेज में नहीं गई, प्रेम का पाठ उसने कहीं नहीं पढ़ा, जन्मते ही अपने बछड़े के प्रति कैसा प्रेम है, उमड़ता हुआ प्रेम, उसके लिए अपने जान को दे देगी, कैसा प्रेम। यह प्रेम किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा? यह प्रेम पढ़ने से नहीं होता, यह हमारी इसमें निश्चित रूप से यह है, किसी न किसी रूप में यह प्रेम है, बस इसी प्रेम को शुद्ध करना है। स्त्री के प्रति जैसा प्रेम है, पति के प्रति जैसा प्रेम है, अभी यह प्रेम नहीं, ये काम है, स्वार्थ है। गाय को हम लोग आदर करते हैं, किस लिए? गाय को नहीं, गाय यदि दूध नहीं देती और बच्चे नहीं देती तो गाय को हम पालन नहीं करेंगे। आम का पेड़ लगाते हैं, बबुल का पेड़ नहीं लगाते, किस लिए? आम से सुंदर सुंदर मीठे फल मिलेंगे, अपने स्वार्थ के लिए लगाते हैं ने? इसलिए आम के रक्षा के लिए हम उसे पानी देते हैं, ऐसा नहीं, उससे हमारा स्वार्थ निकलता है, इसलिए यह स्वार्थ प्रेम का ही विकृत स्वरूप है। जब इसी जगत का ये जो काम है, स्वार्थ है, इसको सबको एकत्र करके शुद्ध करके और कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में हम अर्पित कर देंगे, तो यह भी शुद्ध प्रेम होगा। आत्मा का आत्मा के प्रति परमात्मा के प्रति जो भाव होता है, प्रेम होता है, यही यथार्थ प्रेम है। अभी हम लोग सभी स्वार्थ में हैं, किसी न किसी में जरूर स्वार्थ रहेगा जब तक कि ये शरीर को मैं समझता हूं कि मैं हूं, इसी को कहते हैं शरीर में आत्मभाव, इसको छोड़ना होगा। इसलिए गीता पढ़ना जरूरी है, गीता पढ़े बिना इसका ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए कल इसके संबंध में हमने बतलाया था। आज हम श्रीमद् भागवतीय प्रेम के संबंध में हम कुछ दो एक श्लोकों की मैं व्याख्या करूंगा। कृष्ण जी रास किया, रास माने रस शब्द से ये रास बना। रस माने क्या, इस चीज को समझने के लिए थोड़े से दार्शनिक पहलू मैं कुछ बतलाऊंगा। सबसे पहले ये समझिए, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सुख नहीं चाहता, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो दुख चाहता है, किंतु सुख पाने के लिए जो तरीका जो ग्रहण करता है उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कोई मदिरा पान करने में सुख समझता है, कोई अपनी स्त्री को छोड़ करके अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति या दूसरी स्त्री को प्रेम करते हैं, इसमें सुख मानते हैं। कोई मांस खाने में सुख समझता है, किंतु सुख किसमें है, शास्त्रकारों ने बारीक बहुत गवेषणा करके विचार करके बतलाया। बिना हरि भजन के सुख नहीं है भाई, शांति नहीं मिलेगी। श्रुति सिद्धांत यह है, उर्गारी भजिय राम सब काज विसारी, भजिय राम सब काज विसारी, सरल सरल शब्द हैं, भजिय राम सब काज विसारी। किंतु हम लोग आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, कपास अब कपड़े बनेंगे, कपास बुनो, फिर बुलाई होगी, रुई आएगी, तकली से काटो, काट करके वस्त्र बनाओ, पहनेंगे, इसमें कितने समय। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, आए थे हम आत्मज्ञान लाभ करके, इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का भजन करके, अपने जो अपना जो होम है, अपना जो घर है, वहां जाने के लिए सब हम लोग रिफ्यूजी आए हैं, दो दिन के लिए बस इसी को बनाने में लग गए, और दो दिन के बाद में अरे तुम्हारा ये किराया समाप्त होगा, आप चलना है, सब बना बनाई यहीं पर रह जाएगा, उसके लिए हमने कोई चिंतन नहीं किया। इसलिए कहते हैं मनुष्य मात्र का ही नहीं, प्राणी मात्र का धर्म है प्रेम। अभी प्रेम बिखरा हुआ ये काम और स्वार्थ है, यही शुद्ध होने पर, भगवान के प्रति लगने पर, इसको कहते हैं प्रेम। श्रीमद् भागवत इसी प्रेम को अपना उद्देश्य और ऑब्जेक्ट मान करके उसी की तरफ में ये बढ़ा रहा है। कृष्ण ने बंसी बजाई, कल बतलाया था, उसमें गोपियों को घर लौटाने की बहुत चेष्टा की। गोपियों ने कृष्ण को एक तरह से वशीभूत करके उनकी बातों को काटकर कृष्ण के साथ में रही। कृष्ण ने युक्ति के द्वारा यज्ञ पत्नियों को, ब्राह्मण मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों को तो लौटा दिया घरों में, किंतु इन गोप कुमारियों को लौटा नहीं सके। तो रस कहते हैं, रस ही अरास है। कैसे, एक चीनी गुड़ का रस है, उसे चीनी का शरबत अच्छा है, उसमें नींबू और केवड़ा इत्यादि लगा दिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा। उससे जो परस्पर जो प्रेम करते हैं, या हम टीवी इत्यादि में कृष्ण की लीला या कोई चीज देख रहे हो, उसमें खाना पीना भी भूल जाएगा, उसमें एक रस है, ये मन का रस है। उस मन के रस से भी आत्मा का रस जो है, भगवान के साथ में भगवान की सेवा करना, उनके साथ में क्रीड़ाएं करना, ये और बड़ा भारी ऊंचा है। कृष्ण ने जब अंतर्ध्यान होने के बाद में गोपियों के गीत, गोपी गीत से एकदम सहसा उनके सामने में प्रकट हो गए। जब कैसे प्रकट हुए, मनमथ 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 को पाशाम अभिभूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर्ग सर्व साक्षात मनमथ मनमथ। सौरी मैंने वसुदेव जी के पुत्र क्यों कहा? व्यास जी को जरा, सुखदेव को, गोस्वामी को जरा रोष हो गया। उन्होंने कहा जी यशोदा नंदन या नंदनंदन है, ये तो सौरी पुत्र है, नहीं तो इसका हृदय इतना कठोर नहीं होता जिन गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाता। अब वो मनमथ रूप धारण करके वहां पर उपस्थित हुए। गोपियों ने अपने दुपट्टे सब एकत्र करके, एक एक जातीय गोपियां एक एक उनके लिए गद्दी से तैयार की, अपने कुमकुम लगे हुए वस्त्रों को, ओढ़नी वस्त्र को बैठा लगा दिया। कृष्ण वहां पर कुछ लज्जित हुए और लज्जित होते हुए मुस्कुराते हुए जरा आंखों को नीचे करते हुए वहां पर बैठे। किस लिए? कुछ लज्जित हुए, ओ हमने तुम्हारे साथ में अन्याय किया, तुमने हमारे लिए स्त्री अपने पति पुत्र घर बार देह दैहिक सब कुछ छोड़ दिया और मैं तुम्हें छोड़ करके अंतर ध्यान हो गया। इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए लज्जित हुए और वही वनमाला जो गोपियां ने पहनाई थी उसको पहने वहां पर बैठे। कुछ गोपियां उनके पैरों को अपनी गोदी में ले लिए और उनके तरफ में देख रहे हैं। कुछ गोपियां उनके दाहिने हाथ को अपने कंधे पर ले लिया, एक ने बाएं हाथ को ले लिया और उनके तरफ में देख रहे हैं। एक गोपी जरा दूर होकर के दूर से और अपने कटाक्षों से रोष भरे नेत्रों से उनके तरफ में देख रही, यही उचित था? इसमें टीकाकरण इनके नाम इत्यादि सब बतलाए। जो दूर से रोष भरी उनके तरफ में देख रही वो कौन है? श्रीमती राधिका जी हैं, जो उनके चरणों को अपने गोदी में लिए हुए है, ये दाक्षिण्य भाव वाली चंद्रावली इत्यादि और उनकी सखियां हैं। एक भद्रा जी हैं, उनके चबाए हुए पान को ग्रहण कर रही, ये सुहृद है राधा जी की विपक्ष वाली के ये तटस्था हैं। कोई सुहृद पक्ष की वो श्यामला इत्यादि जी हैं, वो भी जरा रोष से है उनके तरफ में देख रहे हैं किंतु निकट आई हुई हैं। इसके बाद में गोपियों ने कृष्ण से प्रश्न किया, एक प्रश्न एक पहेली बुझनी है आपको। पहेली क्या? पहेली ये, कोई प्रेम करता है तो कोई उससे प्रेम करता है, कोई लाख प्रेम करे वो प्रेम नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करता है। पहला ये, कोई प्रेम करने पर उसे प्रेम करता है या करती है, और कोई इसे प्रेम नहीं करने पर भी उसे प्रेम करता है या करती है, और कोई प्रेम करो न करो वो किसी को प्रेम नहीं करता। पूछती हैं बड़ी भाव के साथ में, बड़ी नम्रता के साथ, प्रभो आप इसमें से कौन से हैं जरा बतलाइए तो परीक्षा ले। कृष्ण के मुख से, कृष्ण के ही तर्कों को युक्तियों को हटा करके कृष्ण खुद से ये कहलाना चाहती हैं कि हमने अन्याय किया, प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं किया, ये कहलाना चाहती हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं या करती हैं वो बनिए हैं। कोई दुकान लगा करके कोई पैसा देता है उनको उतना चीज दे देते हैं माफ करके, वो तो अच्छे जो बनिया हुए वो, नहीं तो तराजू घटिया रहती है तो उसमें कुछ मार लिया डंडी, और अच्छे चीज का नमूना देखा करके घटिया माल भी उसमें चला लेते हैं, ऐसे बनिए हैं। इसलिए इसमें प्रेम नहीं है, सौहृद भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, ये शुद्ध केवल बनियागिरी है। इसलिए कृष्ण से कोई प्रेम करता हुआ, कृष्ण से कोई चीज मांगे और उसकी सारी अभिलाषाएं कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त और कोई कामना वासना डिजायर हो तो ये बनियागिरी है। इसमें धर्म नहीं है, इसमें कोई भी सहयोग नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है, ये सीधा सीधी बनियागिरी। और जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं इसमें धर्म भी है, इसमें सौहृद भी है, दयालुता भी है। ये कौन? माता पिता और गुरु। बेटा बेटी यदि माता पिता की सेवा भी नहीं करते हैं तभी माता पिता अपने पुत्र की कोई भी विपत्ति इत्यादि को नहीं देख सकते, लाख उसको नहीं माने तभी बाप और मैया का ये पुत्र का कल्याण हो, कल्याणम भवतु कहें। कुछ हो गया सब कुछ उसने किया, बंदूक बिताना और थोड़ी देर के बाद ना मैया, जहां मैया कहां बस सब सात खून माफ हो गए। इसलिए इसमें धर्म भी है और सौहृद भी है। पक्षांतर के रूप में कृष्ण ने ये बतलाया कि गोपियां ये तुम हो, मैं प्रेम करूं और न करूं तुम बिना प्रेम किए हुए हमसे रह नहीं सकती, इसलिए तुम लोगों का प्रेम हमारे प्रति है, ये आदर्श है। किंतु मुख से नहीं बतलाया कि तुम। और तीसरा कौन? तीसरा वो जो प्रेम कोई करे और न करे वो किसी से प्रेम नहीं करता। अब इसको चार भागों में विभक्त कर दो, ये विभिन्न प्रकार के स्तर प्रेम का बतला रहा हूं। इसलिए पहले वाला प्रेम प्रेम नहीं है, संसार में 99% नाइन नरे करेंग ऐसा ही प्रेम करते हैं बनियागिरी, इसलिए वो प्रेम नहीं है। घटिया किस्म का प्रेम, वो बिजनेस है ने? और कुछ उसमें थोड़े से रह जाते हैं। कृष्ण अपना प्रेम प्रकाश करें ना करें किंतु वो प्रेम करना कृष्ण नहीं छोड़ता, या प्रेम बहुत उच्च कोटि का है। हम लोग को ऐसे ही कृष्ण के प्रति करना चाहिए। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। बस कृष्ण को सुख देखेंगे, उसमें अपने सुख दुख को वो साधक नहीं देखता है। तीसरे को बतलाया, देखो जो प्रेम करे और न करे वो किसी को प्रेम नहीं करते, वो कौन है? आत्माराम। आत्माराम माने आत्मनिर्मल करने वाला, उसको शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं। सनत कुमार, सनत कुमार सुखदेव गोस्वामी जी आत्मा में रमण करने वाले हैं, नंगे रहते हैं, इनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं, कोई स्वार्थ नहीं जगत से, इसलिए उनको तुम कपड़ा धोती रुपया पैसा सोने का हार दे दो तो भी उनको क्या मतलब, और यदि कुछ भी ना करो तब भी क्या मतलब, ऐसे लोग नहीं करते। और दूसरे कौन? आत्माराम आप्तकाम, जिनकी सारी कामनाएं पूरी हो चुकी है, किसी चीज की कामना ही नहीं है, उसको किसी से क्या मतलब, कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, निंदा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, उसे क्या मतलब, कुछ भी मतलब नहीं। ये आप्तकाम। कृष्ण कहते हैं देखो इन दोनों में से मैं किंतु ऐसा नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? यदि आत्मा रमण में होता, आत्मा में रमण करने वाला, तो बंसी पर जाकर के तुमको कैसे बुलाता, इसलिए मैं आत्माराम नहीं है। आत्माराम के गुरु के गुरु के गुरु हैं किंतु कृष्ण दिखला रहे हैं भक्तों के प्रेम को पाने के लिए मचलते हैं। यशोदा जी का दूध गोपियों का मक्खन खाने के लिए मचल करके उनके घरों में चोरी करते हैं, तो आत्मा काम कहां हुए? यशोदा जी उनको गोदी से उठा करके बैठा गई और दूध को बचाने के लिए गई और कृष्ण ने क्रोधित होकर के भांड तोड़ दिए, कज मैं कहां आत्माराम हूं, मुझको तो क्रोध भी आया, इसलिए मैं आत्माराम नहीं। और आत्मकाम, मेरी कामना ही यदि पूर्ण हो गई तो राष्ट्र क्यों करता तुम लोगों के साथ में, तुम्हारे पैर क्यों दबाता, तुम्हारे श्वेत बिंदुओं को किस लिए पोछता, इसलिए आत्मकाम भी नहीं हूं। जहां यशोदा जी का स्नेह देखा उनको बड़ी भूख लग जाती है, भक्तों का यदि देखा केले का छिलका बिगरानी के घर में देखा बड़ी जोर से भूख लग जाती है, दुर्योधन के घर में मेवा त्याग दिया ने? और इनके घर में बिगड़ाने के, घर में जब गए तो इनको बड़ी जोर से भूख लगी, किसको, आत्माराम के भी, आत्मकाम के भी आत्मकाम, उनको बड़ी जोर भूख लगी। और विदुरानी ने प्रेम में पककर भीतर का साग फेंकने लगी, होश नहीं और छिलके दे रही, और उसको ऐसे खा रहे हैं प्रेम के साथ में, आज द्वारका से अभी तक भूखे ही शायद हैं, बड़ी जोर से भूख लगी। प्रेम का स्वादन करते हैं, प्रेम के लिए उनको भूख हो जाती है, भक्तों का भाव देखते ही उनको उस भाव को आस्वादन करने की लालसा जग उठती है, वो अपने को भी नहीं रोक सकते। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं आत्माराम और आत्मकाम होता फिर राज करके तुमको क्यों बुलाता, फिर तुम्हारे पैर को मैंने दबाया और तुम्हारे श्रृंगार को मैंने ठीक किया। जो गोपी आई थी एक केवल एक आंख में पूछा, कृष्ण ने एक ही आंख में तुम अंजन लगाई, दूसरे आंख में नहीं लगाई, मुझको बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उसको बैठा करके धीरे से काजल निकाल करके उसके दूसरों आंखों में भी वो काजल लगाया, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ये आत्मकाम का ये लक्षण है ना, आत्माराम का लक्षण है, मैं दोनों में से एक। फिर तीसरा, जो गुरुद्रोही होते हैं वो कोई प्रेम करे और ना करे वो गुरुद्रोही लोग ऐसा करते हैं। गुरुद्रोही भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसा गुरुद्रोही होता है किसी कारण से अपने माता पिता से विरोध करता है, और कोई अकारण ही माता पिता से विरोध कर देते हैं। इसमें दूसरे वाले जो हैं अकारण ही जो द्रोह करते हैं वो तो भयंकर महाअपराधी हैं, वो गुरुद्रोही हैं, है ना, माता पिता के सभी ऋणी हैं। माता पिता का और गुरु का ऋण चुकाना बड़ा भारी कठिन है। जो माता पिता की और गुरु की सेवा छोड़ देते हैं मरने के बाद में उनके अपने शरीर का मांस खाना पड़ता है, उसको स्वर्ग जाने के बाद भी यदि किसी कारण से स्वर्ग हुआ वहां पर भोजन नहीं मिलेगा, यहां आकर के अपना शरीर पड़ा रहेगा, उसी का मांस खाना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में ऐसा दिया गया है, प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने संक्षेप से बताया। इनका ऋण कभी दूर नहीं, इनका ऋण एक तरह से ही दूर होगा यदि कृष्ण का किसी ने भजन किया तो, कृष्ण का सभी ऋणी है, उस महाऋण से ये भी ऋण दूर हो जाएगा। माता का ऋण, पिता का ऋण, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, सभी ऋण भगवान का भजन करने से हो जाता है। इसीलिए कहा सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम शरण भजन, मां सुच शोक मत करो, मैं सबका ऋण मिटा दूंगा, तुमको कोई भी क्लेश नहीं होगा, कोई भी पाप नहीं है। इसलिए कहते हैं जो वो गुरुद्रोही जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते, अर्थात माता पिता स्नेह करते हैं, गुरुजन स्नेह करते हैं, किंतु ये गुरुद्रोही है, ये नहीं करते। और उसमें भी एक अकारण, पिताजी वृद्ध हो गए, मैया वृद्ध हो गई, कहते ये मर नहीं जाता, खांसते खांसते एकदम तबाह कर दिया, ये अकारण। और सकारण क्या है, उन्होंने बड़े बेटे को उसने सब कुछ लिख दिया, छोटे बच्चे ऐसे रह गए, कहे तुमने सब कुछ उसको दे दिया, अच्छा पत्थर, ये सकारण द्रोह, किंतु दोनों में कोई नहीं होना चाहिए। सकारण क्या, पत्नी ने कहा जब इनसे हमारी नहीं बनेगी अब हम लोग अलग हो जाएं, बहुत समझाया नहीं माने, अच्छा भाई चलो चलो क्या कर, हम वहां से आकर के पिताजी की कुछ सेवा कर लेंगे, ये सकारण, किंतु है गुरुद्रोहिता, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गुरुद्रोही और अकृतज्ञ, अकृतज्ञ मैंने क्या, किए हुए भलाई को नहीं मानने वाला अकृतज्ञ है। हम लोगों को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए किसी का, माता पिता ने गुरुजनों ने कितनी हमारी सेवा की, एक गाय के लिए हम कृतज्ञ हैं क्योंकि दूध देती है, वो मैया है और उसकी का मांस हम खाएंगे, ऐसा नहीं करें, गो माता है, इसलिए अकृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अकृतज्ञ प्रेम करने पर भी नहीं करते हैं, वो महास्वार्थी जघन्य स्वार्थी होते हैं। इसलिए इसमें प्रेम का स्तर दिखलाया गया, जितना स्वार्थ अधिक है, कोई संसारिक लाभ इत्यादि की पूजा और संसारिक कोई स्वार्थ का कारण है, प्रेम दब जाता है। कृष्ण कहते हैं कि देखो देवियों, इनमें से मैं एक भी नहीं हूं, तुम आप क्या हैं, गोपियां ये चाहती थी जो ये अकृतज्ञ के रूप में कुछ हो, उसे भी कृष्ण साफ दाव बचा करके निकले, तो आप कौन हैं, कृष्ण है कहते हैं मध्य लो कबीदा स्वाना ही वो मई अनुवृत्तये बला मया परोक्षम तिरोहिता इत्यादि। कहते हैं देखो मैं इनमें से कोई नहीं, मैं तो अंतरहित होगा किस लिए, जिस प्रकार से एक दरिद्र व्यक्ति है, अधनो एक गरीब व्यक्ति है और उसको कोई विशेष धन मिला, चिंतामणि मिल गई, पारस पत्थर मिल गया, उसके लिए वो सुरक्षित रख रहा है। थोड़ी देर के बाद किसी ने उसको ले लिया, चोरी कर लिया। अब चोरी कर लिया तो है करने लगा, हा है एक पत्थर गुम हो गया, किसी ने कहा जे पत्थर नहीं हो तो चिंतामणि, और भी चिंतित हो गया। इसलिए कहते हैं मैं तुम्हारा या प्रेम बढ़ाने के लिए मैं कहीं गया था दूर दूर नहीं गया था, मैं तो झाड़ियों के अंतराल में रह करके तुम्हारी प्रेममयी बातों को मैं सुन रहा था और जगत को यह जानना चाहता था जो तुम्हारा हमारा फिट आ गया था। इसलिए देवियों तुम लोग हमारे प्रति द्वेष मत करना, तुम्हारे लिए ही किया था, जो तुम्हारा यह जो प्रेम है उसको ऊपर बढ़ता चले इसलिए छिप गया था। पुनः कहते हैं न पारे हम निरपद्य संजीव, देवियों तुम्हारा ऐसा ऋण है कि मैं तुम्हारा चिर ऋणी हूं, देवताओं जैसी लंबी कोटि कोटि वर्षों की आयु पाकर के भी मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी कदापि उऋण नहीं हो सकता। क्यों? कृष्ण कहते हैं इसके बदले में तुम लोग कुछ मांग लो। कृष्ण कहते हैं यदि मैं कहूं ये तुम मांगो इसमें, जैसे कि ध्रुव जी को राज्य दे दिया 36,000 वर्ष का, जो कोई जो कुछ मांगता है उसको दे देते हैं, कोई मुक्ति मांगता है उसको भी सहज दे देता हूं, यदि कोई बैकुंठ चाहता है उसको बैकुंठ की गति दे देता हूं, सबको माता पिता तक उनके प्रेम का बदला वो दे देते हैं, जो कुछ मांगता उसे दे देते हैं। किंतु देवियों मैं तुम्हारे यहां मैं हार गया, तुमको अपने बदले में कुछ ऋण को से उड़न नहीं सका। क्यों? तुम मांगोगी, यदि कहूं जब मांगो तो तुम यही मांगोगी कि आप अपनी सेवा दीजिए, जब ही सेवा कृष्ण देंगे फिर वो ऋणी बन जाएंगे। इसलिए हे देवियों तुम अपने गुण से और स्वभाव से ही आप ऐसी कृपा करो जो मैं तुम्हारा ऋणी रहूं, मैं तुम्हारा ऋणी नहीं चुका सकता। गोपियों ने कहा जे आप हार करके भी जीते, क्यों? आप प्रेम की मूर्ति हैं, इसलिए आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, इसी शब्दों से आपने हमें खरीद लिया, हम आपकी वशीभूत हैं, सचमुच में हमारा ऋण नहीं ये आपका ऋण है। ये परब्रह्म होते हुए भी मन से तो नहीं कहा ऊपर से, किंतु भाव यही, इतने बड़े होकर के भी और कहते हैं कि मैं आपके प्रेम का ऋणी हूं, मैं हम लोग आपकी यथार्थ ऋणी हैं। ऐसा ये प्रेम दोनों का, यह प्रेम कुछ संसारिक या और कोई वासनामय नहीं होता, विशुद्ध यह प्रेम होता है। इसी प्रेम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। अब हम चलें रास के अंतर ध्यान होने के बाद में कृष्ण आ गए मथुरा में, अक्रूर उनको ले आए। फिर कृष्ण नहीं गए वृंदावन में, ब्रज में नहीं गए, दोनों में दूरी कितनी है? दो अंगुल भी नहीं। ये दो अंगुल माने क्या? यहां पर दो अंगुल मिलती है ना, तो वहां का बॉर्डर यहां का बॉर्डर तो मथुरा और ब्रज का तो मिलता जरूर होगा, वहां पर कितनी दूरी होगी डिस्टेंस? एक डिमार्केशन लाइन केवल, दोनों में कोई दूरी नहीं, किंतु बहुत दूरी है भाव राज्य की। एक ऐश्वर्य भूमि है और एक माधुर्य भूमि है, दोनों के विपरीत भाव हैं। एक तरफ में भगवत्ता प्रधान और एक तरफ में हमारे पुत्र हैं, हमारे प्रियतम हैं, हमारे सखा भाव हैं, ये भाव बहुत दूरी। अब कृष्ण आए हैं मथुरा में, कंस को मारा, कंस के मारने के बाद में लोगों ने ये बतलाना आरंभ किया कि आप देवकी पुत्र हैं, वसुदेव पुत्र हैं, आप क्षत्रिय हैं। कुछ दिनों के बाद में नंद बाबा को भेज दिया, दो दिन के बाद नंद लौट गए, कृष्ण ने उनके हाथों से कुछ आभूषण और वस्त्र भेज दिए मैया के लिए और दूसरों के लिए।
वो लेकर के वहां पर पहुंचे। वस्त्र नहीं दिया, नहीं तो गोपियां कहती जो तुमने कृष्ण को बेचाया रुपए पैसे आभूषणों में, इसलिए चोर की तरफ में पीछे के दरवाजे से घुसे और यशोदा जी को कभी नहीं मुख दिया दिखलाया, ब्रजवासियों के सामने नहीं आते थे। कुछ दिनों लोगों ने कहा भाई इसका उपनयन करा दो, नहीं तो ये फिर वृंदावन में लौट जाएगा, और जब जिस समय उपनयन होगा खबरदार कोई ब्रजवासी ना आने पाए, नंद बाबा या यशोदा किसी को निमंत्रण मत दो, और सब जितने भारतवर्षी या बाहर में जितने हमारे कुटुंब वाले हैं सबको बुलाया जाए। सबको निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया गया, किंतु दो अंग के फैसले पर मथुरा से काशी में वृंदावन उनको नहीं बुलाया गया, वो लोग नहीं आए। उपनयन हो रहा था, छोटे से कृष्ण भी अभी 10-10.5 वर्ष की उम्र, बलदेव जी दोनों का मुंडन हुआ, खड़ाऊ दिए गए, एक लखिया दी गई दंड और पीले रंग के कपड़े उनको पहना दिया, अद्भुत सौंदर्य उसमें से प्रकाशित हुआ, कानों में कुंडल सुने दिए गए। जब दीक्षा आरंभ सब हो गई शेष, यज्ञ पवित्र हो गया, यज्ञ पवित्र हो गया, उस समय में गुरु जी ने गर्गाचार्य जी ने कहा बेटा अब तुम भिक्षा मांग करके ले आओ, माताओं से कहना जे माताजी भिक्षा दें, और पिताओं से क्या कहना पिताजी भिक्षा दें। कृष्ण की वो पीले रंग की वो ओढ़नी को उन्होंने बना दिया झोली और उनके गले में ऐसे डाल दिया, जाओ सबसे भिक्षा मांग लाओ। कृष्ण के उस समय में चिंतन में आया, भाव आया, हमारी मैया ने कहा था जिस समय तुम्हारा उपनयन होगा उस समय तुम्हारी झोली को हीरे और मोतियों से भर दूंगी। कौन सी मैया? यशोदा को मैया कहते हैं, यहां तो मक्खन और रोटी भी भूख लगती है तो रोहिणी जे देती हैं, जो उनको मैया नहीं कहते, मैया कहने में लज्जा आती है। वो कहते हैं बेटा कुछ खा लो, नहीं भूख नहीं है, आरोहणी जी आकर के अपने हाथों से उनको खिला देंगे, क्योंकि अभ्यास है ब्रज का। इसलिए वो चिंतन करने लगे, मैया ने कहा था तुम्हारी झोली हीरे और मोतियों से भर दूंगी, आज मैया कहां खोज रहे, और वो हाथों में सोने के थाल में हीरे जप और रत्न इत्यादि लेकर के देवकी जी खड़ी हैं, जी हमारे पास में तो पहले भिक्षा मांगने के लिए आएगा, एकदम तैयार खड़ी, और कृष्ण उधर देख नहीं रहे हैं, उन्हें जिन्हें कहां देख रहे हैं मैया मैया कहां है, और ऐसे उनके मुख से मैया और मैया और गिर पड़े, आंखों से आंसू तर बतर और बेहोश होकर के जो कहे मैया कहते कहते। इतना ये अभी यशोदा जी के प्रति प्रेम है, ये लोग भुलाना चाहते हैं, ये अब छत्री बन जाए, छत्री का उपनयन होता है इसलिए आज से अपने को जादू समझे, कृष्ण को वो मंजूर नहीं। ये कहते हैं वसुदेव और देवकी के पुत्र, अब ऊपर से ग्रहण करने हैं क्योंकि ये भी तो भक्त है, इसलिए इनकी मनोवांछा करने के लिए कर रहे हैं, प्रेम गोपियां करती हैं ब्रज में करते हैं अधिक, किंतु इसलिए जगत के सभी भक्तों को छोड़ देंगे ऐसा नहीं हो सकता, किसके आश्रय रह में रहेंगे, इसलिए यदि द्रौपदी पुकार रही है उसको दिए भी जाए, आप लोग पुकारते हैं जब कीर्तन करते हैं तो आपके लोगों के भी पास है, इसलिए वो सबके हैं, इसलिए मथुरा भी उनको आना है, द्वारका भी जाना है, पांडवों के लिए महाभारत युद्ध में पांडवों की रक्षा करना है और धार्मिकों का संहार भी करना है, बहुत से भी उनके कर्तव्य हैं, इसलिए प्रेम की भूमि ब्रज में है, तथापि यहां पर तो आना पड़ेगा ही, इसलिए कृष्ण यहां पर रहे। कुछ दिनों के बाद में गुरुकुल में गए और वहां से लौटे और जमुना के किनारे मथुरा में शक करके बहती हैं तीन तट से यमुना जी, उसी के ऊपर में वसुदेव महाराज की विराट अट्टालिका थी, कंस का राजभवन अब कृष्ण के ही उसके मालिक हैं, उग्रसेन को उन्होंने राजा बना दिया, अपने राजा नहीं हुए, उनको इस छोटे से राज्य से क्या जरूरत है, वो तो भूमंडल के राजाओं के राजा हैं वो, इसलिए राजा नहीं लिया। अब वही कृष्ण ऊपर में बैठे हुए हैं, उन्होंने ऊपर की तरफ में देखा, देख रहे हैं ओहो ब्रज भंस हो रहा है, गायें चरती नहीं, बछड़े दूध नहीं पीते, जब से मैं आया हूं सारी प्रकृति एकदम उदास हो गई है, बच्चे खेलते नहीं, गायें चरते नहीं, मयूर नाचते नहीं, कोयल कुहू कुहू अब नहीं करती, फूल समय पर जो पहले जो विकसित होते थे अब नहीं होते। इस तरह से कृष्ण देख करके भाव नेत्र से देख रहे हैं, हमारे पिताजी और माताजी हमारे विरह में बड़े दुखी हैं। अंत में गोपियों के लिए कहते हैं, गीता में एक बतलाया गया है, अंतिम सर्व गुह्य तमम भूय शुणु में मैं परमम बचह, अंतिम उपदेश में क्या उपदेश, आत्मज्ञान ये गुह्य ज्ञान है, इससे भी ऊपर और एक गुह्यतर ज्ञान है, उससे भी ऊपर गुह्यतम ज्ञान है, और सर्व गुह्यतम ज्ञान है गीता का उपदेश मनमना भव। मनमना भव माने क्या, कृष्ण यहीं पर यह चीज को दिखला रहे हैं, गोपियां कैसी हैं, मदगत चित्ता, सब कुछ अपना देह देहत और सर्वधर्मान जो गीता में लिखा गया है उसकी मूर्ति है। ये कैसे सर्वधर्मान प्रत्यय होता है, गीता में इसका दृष्टांत नहीं दिया, इसका दृष्टांत एकमात्र गोपी है, सर्वधर्मान प्रत्यज्ञ, यशोदा जी सब धर्मों को नहीं छोड़ सकती, नंद बाबा को नहीं छोड़ा, नंद बाबा को नहीं छोड़ करके भी कृष्ण को स्नेह किया, किंतु गोपियों ने क्या किया, पति पुत्र है तो पुत्र, देह दैहिक सब कुछ भूल गई, सखा लोग भी अपने माता पिता को छोड़ करके कृष्ण के पास में नहीं आते थे, उनके भी माता पिता हैं, किंतु गोपियों ने अपना गृह अपना घर अपना शरीर अपना पति अपने सब कुछ जो कुछ था सारा, यहां तक कि बड़ा श्रम धर्म, यहां तक कि लज्जा को भी छोड़ दिया कृष्ण के लिए। उद्धव जी से कृष्ण कह रहे हैं, हाथों में उद्धव जी उनको खोजते खोजते कृष्ण कहां गए गए, ऊपर में देखा अट्टालिका के ऊपर में कृष्ण के आंखों से आंसू निकल रहे हैं और कुछ अनमने से हो रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा, अरे भैया ये क्या, तुम किसके लिए इतना मन खराब करो, क्या बात हो गई। उन्होंने कहा जो उद्धव ब्रज विशरता नहीं, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, मेरे माता पिता बड़े दुखी हैं मेरे लिए, तुम जाओ उनको कुछ सांत्वना दो, और गोपियां प्रेम की मूर्ति हैं, हमारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, विरह में तड़फड़ा रही हैं, आप उनको जाकर के कुछ सांत्वना देना, मैं कुछ संदेश दूंगा लेकर के उनको कहना। इसमें उन्होंने कहा गोपियां मनमना भव हैं, कैसे मनमना भाव है, एक उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं, कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, लाखों बछड़े और बछड़ियां फुदक रही हैं, चलते चलते कृष्ण ने देखा एक घर के दरवाजे में एक कोई नवविवाहिता इंद्रप्रस्थ से अभी आई है नंदगांव में, अभी नई दुल्हन, जब कृष्ण बांसुरी बजाते हुए बछड़ों को लेकर के सखाओं के साथ में जब वन में चल रहे हैं प्रस्थान करने की दिशा में, वो दौड़ी हुई जाने लगी कृष्ण का दर्शन करने के लिए, चारों तरफ में हो हल्ला हो गया, कृष्ण वन में जा रहे हैं, सभी लोग जो जहां थे यहां तक कि अंधा भी एक अंधे को पकड़ करके कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ रहा है, गोपियां वहां पर बैठी हैं, कोई झरोखे में बैठी, कोई कुंज में बैठी, कोई अपने अट्टालिका में बैठी, कोई कहां बैठी, चारों तरफ से कृष्ण को दर्शन कर रही हैं सभी। ये नवेली जब जाने लगी तो उसके सास ने कहा देखो तुम मत जाना, तुम घर में बैठी रह, बाहर में जाने से एक काला सर्प है तुम्हें डस लेगा, उसका बीज कभी नहीं उतरता, तुम मत जा। क्योंकि तेरी बेटी किस लिए जा रही, अरे मैं तुमको मना करिए दूसरों का मत देखो अपना देख, तो आप क्यों जा रही हैं, मैं जा रही हूं किंतु तुम यहां बैठ, उसने कहा जिससे आप भी जा रही है, तो वो आगे चली गई, तो ये पीछे से ही भी चली गई और जाकर के वहां दरवाजे से आड़ में, घुघट की आड़ से उनको देख रही। कृष्ण ने बड़े दूर से उसको देखा, जहां भाव है कृष्ण की नजर जरूर पहुंचेगी, कोई भी हो यदि कृष्ण के तरफ में थोड़ा सा भी यदि कुछ स्मरण किया, कृष्ण उसे छोड़ नहीं सकते। ये जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, उनकी यह प्रतिज्ञा है जरूर देंगे उसका। इसलिए जब गोपी ने देखा भाव नेत्र इनके तरफ में, तो कृष्ण से रहा नहीं गया, उन्होंने एक बछड़े की पूंछ छू दी। अब बछड़ा क्या किया, कुत्ता हुआ, उधर ही चला जिधर कृष्ण उसको डायरेक्शन थोड़ा सा दे रहे हैं, ठीक एकदम उसी दरवाजे पर पहुंच गए कृष्ण। मानो बछड़े को संभालने के लिए दौड़ रहे हैं और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, किंतु उद्देश्य है दूसरा। वो ठीक वहीं पर पहुंच गए, देखा जी वो तो अनमनीषी इनके तरफ में एकदम सारी चित्त वृत्ति लगा करके एकदम देख रहे। कैसा तैल धारावत अविच्छिन्न गति से चित्त की सारी वृत्तियां अनायास ही कृष्ण के तरफ में लग गई और शुद्ध बुद्ध शरीर की खो गई। कृष्ण ने बंसी बजाते हुए थोड़ी सी बंसी निकाली, उसके कपोलों को स्पर्श कर दिया और निकट से उनको तरफ में देख करके फिर बछड़े को उड़ाया और बछड़ा छलांग मारता हुआ चला गया, कृष्ण भी चले गए। किंतु कृष्ण जो गए ऐसे नहीं गए, उसके चित्त को साथ साथ में लेते गए, उसके मन को उन्होंने लेते गए, लेकर के और चले गए। सारे बछड़े चले गए, कृष्ण चले गए, जंगल के अंदर में अंतरहित हो गए, चले गए भीतर। तब तक वहीं पर खड़ी रही, धूल उड़ती रही, उसको भी देखते रही, बेमन की हो गई और खड़ी एकदम लकड़ी की भांति। अभी लौटना है घर में, अब होश नहीं रही। फिर वो कृष्ण चले गए, धूल भी उड़ती समाप्त हो गई उसकी सास, अरे अभी तक तू खड़ी है, कहा था ना जो वो बड़ा भारी विष वाला सांप है, काला नाग है, वो यदि किसी को काट लेगा उसका विष नहीं उतरता, यही तो देखा, तो यही हुआ। उसको पकड़ करके झकझोर करके ज्ञान लगाने की चेष्टा की और फिर लौटी, लेकर के घर में बैठी। कहिए इसका होश कैसा कराया जाए, कहिए से जाओ घर से दही निकालो, निकाल कर समंथन करो। वो घर में गई अनमनीषी और एक हणिया उठा लाई, उसमें रखा था सरसों, उसमें रखा था सरसों, जानते हैं ना सरसों रखा था, उसी हड़ी को लेकर के उसी में मंथन लेकर के चलाने। थोड़ी देर हुई, उसे शासन देखा, ये घर घर तो नहीं कर करके, ये तो खर कर रही है। फिर जाकर, अरे ये क्या कर रही है, अरे मैंने दधि मंथन करने के लिए कहा था। अच्छा एक बात कर, उठ उठ उठ, उसको उठाया, जाओ कुएं से पानी भर लाए और उसके सिर पर एक घड़ा दिया, उसके ऊपर में एक और घड़ा दिया, उसके ऊपर में एक और छोटा घड़ा दिया और यहां पर डोल और बाल्टी रस्सी दे दी। कुएं भी बहुत गहरे होते हैं, ले बड़ी रस्सी लंबी सी दे दी, बड़ी भार, उसमें एक और डोल लगा दिया, उसको इस हाथ पर दे दिया और इस हाथ में भी घड़े एक रख करके उसके ऊपर में घड़े दे दिया और दूसरे हाथ में अपना छोटा सा भी बच्चा था उसके गोदी में बैठा, ये इसको लेते जा और पानी भर करके जल्दी आ जा। देखा ये इसमें भी तो होश आए। वो कुएं के समीप में गई, घड़े को रखा, बच्चे को रखा और पानी भरेगी, और भी भरने वाली बहुत सी किशोरियां थी, वो पानी उसमें से भर रही थी। उसने क्या किया, रस्सी लगा करके कहा घड़े के अंदर में देना चाहिए, तो उसने उसमें फंदा बना करके और बच्चे को ऐसे देख रही है, कृष्ण को देख रही है, चित्त तो वहां, और उसके घड़े में फंदा लगा दिया। जब फंदा लगाया, अरे ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, किसी ने कहा इसको भूत लग गया, दूसरे ने कहा भूत नहीं नंद का पूत लगा। इस तरह से ये मनमना भव है। माला करते समय हम क्या करते हैं, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार, चार बार, अरे वहां पर गिनने का समय है, वो गिन रही थी माला। माला करनी चाहिए तो ऐसे तन्मय होकर के करना चाहिए, ये मन मना भाव का उदाहरण है, यही सर्वगुह्यतम उपदेश गीता का है। नहीं समझते हैं लोग, अब इसको पाने के लिए सर्वधर्मान प्रत्यज, सब धर्मों को प्रत्याग करके जैसे गोपियों ने किया था वैसा तन्मय होकर के करना, यही गीता का है। इसलिए कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, गोपियां मन मना भाव जैसी, मदगत चित्ता, मत प्राणा, वो हमारे प्राण स्वरूप हैं, वो हमारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं गोपियां। इसलिए जाना, पहले माता पिता को सांत्वना दे करके फिर गोपियों के यहां जाना। ये बच नहीं सकती, अब मरी अब मरी अब मरी, मरती क्यों नहीं? मत संदेश ही। हमने उनसे आते समय कहा था मैं कल आने की चेष्टा करूंगा, और नहीं आया तो परसों जरूर आऊंगा। इसलिए वहां पर पलसो नाम का एक गांव है, आयो रे वहां पर एक ग्राम है। ब्रज के जितने गांव है ना, जितने हैं सब कृष्ण की लीला की स्मृति देते हैं। आयो रे मैंने आ गया आ गया आ गया, पलसो मैंने अभी परसों आएगा। इस तरह से पायगाम, पायगाम मैंने क्या, जहां पर कृष्ण दूध पी रहे हैं, कोई खेलन बन है, कोई कुछ है, सब उनके नाम के ऊपर में ये सब रखे गए। तो ये कृष्णचंद्र जी, हाँ क्या बतला रहा था, ये नाम बतला था गांवों के, जैसे उन्हीं के कृष्ण के ऊपर में ये सब नाम रखे गए हैं उस समय के। तो ये कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं कि जाओ इनको सांत्वना देना, ये ऐसे उन्नत प्रेम हैं, इसलिए मर नहीं रही हैं, क्योंकि मैंने कहा था ये परसों आएंगे, कल आएंगे नहीं तो परसों, किंतु कल गया परसों गया तरसों गया बरसों गया, अभी तक नहीं आ रहे, आएंगे जरूर उन्होंने कहा है तो, सत्य संकल्प हैं, जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, इसलिए आएंगे, किंतु अभी नहीं आएंगे जरूर, इसलिए प्राण नहीं निकलते। और इसलिए प्राण नहीं निकलते, यदि वो सुनेंगे आएंगे जो गोपियां मर गई तो कृष्ण क्या करेंगे, एक सेकंड भी प्राण नहीं धारण कर सकते हैं। इसलिए हम अपना दुख नहीं देखती, हम क्या देखती हैं, कृष्ण कभी दुखी न रहे, कितना बड़ा त्याग है, इससे बढ़कर के कोई त्याग नहीं हो सकता, इसलिए मर नहीं रहे। कोई गोपी कहती यदि हम मर जाएं तो हमारे शरीर को तमाल वृक्ष में लटका देना, उसी के साथ में हम लटका देना, उसका प्राण जो निकले सूर्य के रश्मियों में जहां पर नंद बाबा का घर है उसके ऊपर में मर आता रहे, पानी कहां पावन सरोवर में मिल जाए जहां पर के कृष्ण स्नान करते हैं, हवा कहां हो हमारे शरीर के जो बिंद प्राण वो नंद बाबा के आंगन में उड़ती रहे, जो हमारा स्पर्श करते रहे, हमारी मट्टी मिल जाए नंद बाबा के भवन में जहां पर की कृष्ण रोज चलते हैं। इसी तरह से प्रार्थना करती हैं ऐसे गोपियों को, तुम सांत्वना देने के लिए चलो। तात्पर्य क्या, तात्पर्य इसका ये, ब्रज ये प्रेम की भूमि है, मथुरा ऐश्वर्य की भूमि है। ऐश्वर्य और माधुर्य कहते हैं किसको, इस चीज को समझो, भगवत्ता को ऐश्वर्य कहते हैं। कृष्ण जैसे अलौकिक कार्य करते हैं एक साथ में, अर्जुन को मुख में ब्रह्मांड दिखलाया, ये सब ऐश्वर्य है। गोवर्धन को धारण कर लिया, ये भी ऐश्वर्य है। एक साथ में कोटि कोटि ब्रह्मांड लोग उनको स्तव स्तुति कर रहे हैं और कृष्ण उनके तरफ में देखते नहीं है, ये सब ऐश्वर्य है। और माधुर्य किसको कहते हैं, ऐश्वर्य रहे और न रहे, नर लीला के अनुरूप सब उनकी लीलाएं हो कार्य हो, तो इसको कहते हैं मधुर भाव। पुतना को कृष्ण ने मारा, ये अलौकिक कार्य है, किंतु गोदी में बैठे हुए दूध पी रहे हैं, और यदि जो वो पुतना मर जाए तो ये क्या करें। आकाश मार्ग में चलने की इच्छा हुई, तृणावर्त असुर उनको लेकर के ऊपर गया, उसके गले को पकड़ लिया, यदि वो मर गया तो कृष्ण, कृष्ण ने किसी से लड़ा नहीं, सबसे पहले लड़ाई उनके कंस के ये पहलवानों के साथ में पहले वो लड़े, इसके पहले कभी किसी से लड़े भी नहीं। बाल्य लीला करते हैं उसमें कोई मर जाता है, असुर अपने अपने कर्मों से वो अलग हो जाते हैं। ये सब ब्रज की लीलाएं हैं, मधुर लीलाएं हैं। अब चलें, उद्धव जी मथुरा हैं, मथुरा के दृष्टि से गोपियां जब ब्रज में थी प्यार कर रही हैं, ब्रजवासी लोग प्यार कर रहे हैं, ये माधुर्य भूमि। अब उद्धव जी को भेज रहे हैं मथुरा में, यहां के नेत्र से तुम देखो, संसार देखे, जो प्रेम क्या चीज है गोपियों का, इसलिए भेज रहे हैं। किस लिए? मैंने जिस पाठशाला में बैठ करके प्रेम का पाठ पढ़ा था उसमें प्रिंसिपल राधा जी हैं और प्रोफेसर कौन सब हैं? ललिता विशाखा इत्यादि प्रोफेसर हैं, ये शिक्षक हैं। तुम उस पाठशाला में जाकर के पढ़ो कुछ दिन, तो अढ़ाई अक्षर का प्रेम तुम समझ सकेगा। तुम जब लौट करके आएगा तब प्रेम के संबंध में मैं तुमसे बातचीत कर रहा था। अभी तुम प्रेम का अधिकारी नहीं है, समझता ही नहीं है, तो तुमसे क्या मैं बात करूं। इसलिए प्रेम की पाठशाला में कुछ सीखने के लिए उन्होंने भेजा, किंतु उद्धव को कहा जे जाओ उनको सांत्वना दे दो, क्योंकि तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम में तत्व है, तुम उनको समझा सकता है। ऊपर से कहा उद्धव जी को, हो सकता है कि कुछ अभिमान हो, मैं बहुत ज्ञानी हूं, कृष्ण का बहुत मैं प्रेमी हूं, कृष्ण के बिना एक सेकंड नहीं रह सकता, ये उनको ये सब भान है। इसलिए उद्धव जी को दूसरे रूप में कहा जे जाओ वहां पर प्रेम का पाठ पढ़ो। कृष्ण ने कहा जे देखो हमारे पिताजी के चरण छू करके प्रणाम करना, मेरी मैया को प्रणाम करना, कहना जे मैं तुम्हारे लड़के पुत्र कृष्ण का मैं मित्र हूं, सखा हूं। उद्धव जी साधारण नहीं है, बृहस्पति के शिष्य हैं, कृष्ण के मित्र हैं, उनके सलाहकार और मंत्री हैं। ऐसे उद्धव जी परम बुद्धिमान हैं, उनको भेजा। उद्धव जी ने कहा जी प्रभु मैं आपको छोड़ करके नहीं रहूंगा, मैं कैसे वहां रहूं। उन्होंने कहा जी देखो जाओ वहां पर, देखा जब मैं संपूर्ण रूप से वहां हूं, मैं मथुरा में एक अंश में हूं, मैं एक अंश में यहां हूं और सौ भाग में सौ भाग वहां पर हूं, जाओ। तो पहले कृष्ण ने कुछ उनसे संदेश भेजे, ये जाकर के कहना तुम्हारे कहने से उनको सांत्वना नहीं होगी, इसलिए तुम मेरे संदेश को लेकर के वो चले। देखिए जिसे कृष्ण जा नहीं रहे हैं, लौट नहीं रहे, उनके हाथों में हाथ मिला करके और चल रहे हैं और रथ सोने का चल रहा है। उद्धव जी ने स्वयं रथ पर बैठ करके रथ चलाना आरंभ कर दिया, कृष्ण खड़े रह गए, रथ चला गया, धूल भी ओझल हो गई, वही के वहीं कृष्ण खड़े रह गए। फिर लौटे, ठीक है, लौटने के बाद में उद्धव जी वहां पर पहुंचे, शाम हो गई, रथ को खड़ा कर दिया, नंद भवन में पहुंचे। नंद बाबा को खबर आई कि वहां से उद्धव नाम का एक लड़का आया है, कृष्ण का मित्र, बाहर में आए और उसको बड़े प्रेम के लिए साथ ले जाकर के रखा। देखा जिससे पहले इसको कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, बैठ जाएगा तब वहां का समाचार पूछूंगा, कन्हैया मेरा कैसा है ये पूछूंगा, उनको खिलाएंगे क्या? जब से कृष्ण गए हैं तब से चूल्हे लिपे पुते नहीं हैं, मकड़ों ने जाल बुन दिया और बर्तन जो है रसोई के औंधे पड़े हुए हैं, वो मांजे नहीं गए, रसोई घर में भी चारों तरफ में मकड़े के जाल लग गए। इस तरह से वैसा है कावशा, किसके लिए रसोई बने जब खाने वाला ही नहीं रहे, इसलिए रसोई तब से नहीं बनी। बड़ी मुश्किल से एक ब्राह्मण को कहा, वो जाकर के खीर बना लाए, उसमें भी चीनी नहीं, बिना चीनी का खीर उनको खिलाया। और इसके बाद में थोड़ी विश्राम करने के बाद में दोनों बैठे, नंद बाबा कहते हैं कुछ बोलते हैं किंतु बोली नहीं निकलती, जो ही कृष्ण के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं हृदय भर जाता है, गला रुद्ध हो जाता है, आंखें एकदम भर जाती। बड़ी मुश्किल से कहा, हमारा भैया वसुदेव कैसा है? ओ बड़े सौभाग्य की बात है कि कंस मारा गया, अपने पापों से मारा गया, उसके पापों ने उसे मार डाला, किसी ने उसे मारा नहीं। ओहो मेरा कन्हैया कैसा है ये पूछना ही चाहते हैं, और गला रुद्ध हो गया, बड़े जोर से रोने लग गए, जितना ही उसको बोलना चाहते हैं वो कुछ नहीं बोल सके। फिर बात उन्होंने बदली, बादल बलते हैं फिर अब वही पूछना चाहते हैं जे कन्हैया कैसा, गला एकदम रुद्ध हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में बड़ी मुश्किल से कहा, ओहो कृष्ण कभी हमें स्मरण करता है? स्मर्तिना, हमें स्मरण करता है कृष्ण क्या? अपने मित्रों का कभी स्मरण करता है? कभी अपनी मैया का स्मरण करता है? कभी मुझे स्मरण करता है? क्या गोवर्धन को भूल गया? क्या वो जमुना के किनारे को भूल गया? क्या गायों को और बछड़ों को भी भूल गया? ओह, मैं जब घर में रहता हूं तो कृष्ण की झिंगुली, कृष्ण की मुरली, कृष्ण के खिलौने मुझे याद देते हैं, और मैं रह नहीं सकता कृष्ण को भूलने के लिए, यमुना के किनारा जाता हूं। वहां पर कृष्ण के सुंदर सुंदर छोटे छोटे पैरों को देख करके, उसमें शंख चक्र उसके जो चिन्ह देख करके, मैं अस्थिर हो जाता हूं, मुझे धारस नहीं बनता। वहां से मैं गोवर्धन को जाता हूं, वो देखता हूं कि ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसके नीचे उसने लीलाएं नहीं की, उसमें कंदरा कंदराओं में उनने लीला की, उसकी छवि वहां पर पड़ी हुई है। मैं जहां जाता हूं मुझे धैर्य नहीं होता। ओह, कृष्ण ने ये 60,000 कितना कितने हाथियों का बल वाले कंस को, चारुण को, मुष्टि को क्षण मात्र में उनको गिरा दिया। उन्होंने अगासुर बकासुर और ये सब राक्षसों को खेल के खेल के खेलते ही उनका काम तमाम कर दिया। ओह, ये कृष्ण ये कैसा था, कैसे उसको हम भूल सकते? ये कहते हुए वो बड़ी जोर से चिल्ला चिल्ला करके बच्चों की भांति रोने लग गए। उद्धव जी ने सोचा कृष्ण ने सच कहा था, ये बड़े दुखी होंगे, इनको सांत्वना देना चाहिए। क्या सांत्वना दूं? नंद बाबा आप मत रोइए, यही कहूं तो किसी का लड़का कोई मर जाए तो कोई सांत्वना देता है, ये मत रो मत रो। अरे ये लड़का आना जाना ये प्रभु की हाथ की बात है, इसमें रोने से क्या तुम्हारा लड़का आ जाएगा? किंतु जो कृष्ण के लिए रो रहा हो, जिनके आंख से एक बूंद भी यदि आंसू कृष्ण के लिए निकलता हो, तो ये महान सौभाग्यवान है। सभी शास्त्र कहते हैं, हम लोग इतना सुनते हैं, करते हैं, भजन करते हैं, कहां आंसू, कहां हृदय द्रवित होता है। इसलिए परम सौभाग्य वह व्यक्ति है जो कृष्ण का नाम सुनकर, उनकी लीला कथाओं को सुनकर के तन्मय होकर के आंखें बरसने लगे, हृदय द्रवित हो जाए। आज इनको देख रहा हूं, कहां कृष्ण समस्त ईश्वरों के ईश्वर, अनादि स्वयं, सबके आदि, सब कारणों के कारण कृष्ण, यहां तक कि राम इत्यादि सबके अवतारों के भी मूल अवतारी स्वयं भगवान कृष्ण। उद्धव जी सोच रहे हैं आज उनको अपना पुत्र मानकर के ये रो रहे हैं, ऐसा सौभाग्य जगत में मैंने कभी देखा नहीं न सुना। इसलिए उनके मुख से हठात निकल गया, आप दोनों महाभागा है, एक ये यशोदा जी और आप, ये ऐसे समस्त कारणों के कारण परब्रह्म, जिसको ब्रह्मा अपने ध्यान में भी नहीं देखते हैं, और उसको तुम लोगों ने अपना पुत्र मान करके, आंखों की पलकों की भांति तुम लोगों ने कृष्ण को पुतली मान करके उनकी सेवा की, उनको किया, और अपना पुत्र मान करके उसके लिए रो रहे हो, तुम्हारे जैसा सौभाग्यवान कोई नहीं है। नंद बाबा सुनते ही उनकी आंखें सूख गई और कहते हैं उसे, बेटा तुमने क्या कहा, तुम बड़े सौभाग्यवान हो, तुमने कृष्ण का संग नहीं किया, कृष्ण जैसी अकल तुमको आई नहीं, मैं देखता हूं कि अभी अकल के दांत तुम्हारे टूटे नहीं, तुमको तनिक भी बुद्धि नहीं हुई। किसको कह रहे हैं? बृहस्पति के शिष्य, कृष्ण के मित्र, परम ज्ञानी, तत्वज्ञानी उस उद्धव को कह रहे हैं, जो तुम नीरा बालक है, अभी दांत नहीं टूटे। नंद बाबा वो कहते हैं, ये क्यों हमको कह रहे हैं? नंद बाबा बोले, देखो हमसे जगत में कोई दुर्भागा है? कोई भी दुर्भागा नहीं। तुम कहते हो ये कृष्ण भगवान है, मैं तो सोचता था जो वो मेरा लड़का केवल है, और तुमने आकर के बतलाया जो स्वयं भगवान है, ऐसे भगवान को भी पा करके मैंने उसे खो दिया, वो हमारे हाथों से निकल करके अब चला गया मथुरा में। हमारे अंदर में इतना भी प्रेम होता है तो हमें छोड़कर के जाता? कभी नहीं जाता। अपनी प्रेम भूमि को छोड़कर के, कोई जहां पर कोई प्यार करता है उसको छोड़कर के, जहां पर कम प्यार मिलता है उसके आदमी नहीं जाता। इसलिए मेरा जैसा दुर्भाग्य इस जगत में किसी ने जन्म नहीं लिया, आगे भी जन्म नहीं ले गया, भूतो न भविष्यति, ऐसा दुर्भाग्य मैं और हमारी पत्नी यशोदा जी थी। और भी रोने लगे। उद्धव जी कहते हैं कि हाय हाय, हमने बहुत गलती की, बहुत भारी गलती की। सचमुच में ये नंद बाबा जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मैं क्या कहूं? यदि कहूं ये तुम दुर्भागा हो, रो मत, तो शास्त्र हमारा मुख बंद कर देते। ऐसा मत कहो, जो कृष्ण के लिए एक बूंद भी रोता है उसके समान जगत में कोई सौभाग्यवान नहीं। सचमुच में तो यह बात तो मैंने ठीक ही कही, किंतु नंद बाबा के तरफ से देखो तो ये ठीक कह रहे हैं। नंद बाबा बोले, और ये देखो बेटा तुमको मैं बतलाऊं, एक बाप था, वो कौन? दशरथ। कैसा उसका प्रेम, बेटा चला गया और उन्होंने कहा हां राम हां राम, तीसरी बार मुख से नहीं निकला हार, वहीं पर अपने शरीर को छोड़ दिया। मेरे अंदर में प्रेम कहां, जो मैं कृष्ण के लिए अभी तक मर नहीं गया। चैतन्य महाप्रभु यहीं पर कहते हैं, न प्रेम गंधो सिदरापि मे हरौ सौभाग्य क्रंदामि सौभाग्य भरम प्रकाशितम वंशी विलास्यानन अवलोकनम बिना विभत्म जत प्राण पतंग कान वृथा। मछली को प्रेम है, सचमुच में प्रेम है पानी से। पानी से मछली को निकालो, क्या करती है? यह नहीं कहते जो मुझे पानी से प्रेम है, अपने प्राणों को ही छोड़ देती है। हाँ, हमारा प्रेम तो ऐसा कृष्ण के प्रति नहीं हुआ, कोटि कोटि जन्मों से कृष्ण से हम बिखरे हुए हैं, उन्हें भूल रहे हैं और प्राण नहीं निकल जाते। इसलिए प्रेम का गंध भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं जीवित हूं और हा कृष्ण कर रहा हूं, ये लोगों को दिखलाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा भारी आदमी हूं, मैं कृष्ण कृष्ण कह रहा हूं, आंखों से आंसू गिरा रहा हूं। सचमुच में ये प्रेम रहता तो मैं मर जाता। वंशी बिलासा नन अवलोकनम बिना, मैं कृष्ण के वंशी बजाने वाले कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन नहीं करा, मैं मर नहीं गया। दशरथ महाराज जी तुरंत राम राम कह करके मर गए, फिर उनके प्राण नहीं लौटे। उसी प्रकार से मेरे प्रेम कहां। इसलिए नंद बाबा तो बड़ी जोर से रोने लगे, उन्होंने कहा जो है ये ठीक कह रहे हैं, इनको क्या समझ, इनका प्रेम कैसा है, अथाह अनंत है। हिमालय की सुनते हैं चोटी सबसे ऊंची 29,027 कितना फुट है, उससे भी बहुत ऊंचा लाखों मील टोपी गांधी पहन करके उसकी देखते हैं जो कितना ऊंचा है, उसकी जड़ में आकर ऐसा देखा 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 करते करते टोपी गिर गई। उद्धव जी की ज्ञान की जो टोपी थी गिर पड़ी। देखा जी इतना इनका बात्सल्य प्रेम, सचमुच ने कृष्ण ने इसीलिए इसको देखने के लिए ये भेजा था। आज मेरा सौभाग्य है इस प्रेम की मूर्ति को, बात्सल्य प्रेम की मूर्ति को देखता हूं। यशोदा जी के तरफ में देखा, यशोदा जी के भावों को देख करके तन्मय हो गए, बोली अहो ये तो होश ही नहीं इसको, ये तो बात भी कर रहे हैं। यशोदा मां का प्रेम और भी आघात था। ऐसे कहते 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 भोर हो गई। भोर होने के बाद में ये निकले स्नान करने के लिए। उसी समय उन्होंने देखा क्या, कुछ गोपियां खड़ी हैं। कहां खड़ी हैं? नंदगांव में उद्धव क्यारी नाम का एक जगह है, स्थान वहीं पर बैठी थी। जोगबाया ने उन गोपियों के बदले में उन्हीं का जैसा रूप बना करके माया की मूर्ति उनके घरों में भेज दी। वो अपने पतियों के साथ में थे, इसलिए पति लोग समझते थे कि हमारी स्त्रियां तो हमारे घरों में ही हैं, इसलिए उनके प्रति कोई भी असूया नहीं प्रकाश की, कोई कुछ नहीं बोले। वो समझे हमारी स्त्रियां तो ही, अब तब से वो घर में लौटी नहीं। उसमें एकदम बावरी वहीं पर, उद्धव जी पहले पहले उनको देखा, वो क्या बातचीत कर रही हैं? ओह ये किसका रथ, ये सवेरे देखता हूं देखती हूं, ये रथ किसका, मैं नहीं जानती। आप तो नहीं तो, अरे वो अक्रूर आया है ना, क्रूर आया है, पहले एक बार क्रूर आया ले गया हमारे प्रिय, हम लोगों के प्रिय, ये दूसरा बार क्यों आया, तुम नहीं जानती, ये इसलिए आया है, सुनते हैं कि कंस मारा गया है तो उसकी बारहवीं होती है ना, पिंड दान किया जाता है। देखा जी मथुरा में पिंड कहां से ले आए, वृंदावन में चलो, इसलिए क्रूर आया है पिंड ले जाने के लिए। पिंड यहां क्या, सभी ब्रजवासी कृष्ण के बिछो में मर गए हैं, इसलिए सहज रूप में उनका हित पिंड निकलेगा, उसी को निकाल कर लेकर के कंस का पितृ तर्पण और उसको पिंड देंगे, इसलिए शायद आए। कोई कहती है जैसे बात तो ठीक है, किंतु ये भी बात नहीं, बात यह है अपने मैया बाप को दिखलाने के लिए जो मैं मथुरा का राजा बन गया, मैं एक गरेड़िया की भांति गोपालक था, गैया चराता था, अब मैं वैसा नहीं रहा, अब मैं यहाँ पर कंस को मार करके यहाँ पर महाधिराज मथुराधिराज द्वारकाधीश बने हैं अब, इसलिए उनका नौकर भी आ रहा है सोने के रथ में चढ़ करके, तो वो किस रथ में आएंगे इस चीज को दिखलाने के लिए, मानो ये नौकर को भेजा है सोने के रथ में। उद्धव जी कहते हैं हाय हाय, मैं जानता तो सोने के रथ में चढ़ करके नहीं आता, ये तो बड़ी भारी गलती हुई, बहुत भारी बने गलती, खूब दीनहीन को कहना चाहिए, बड़े लज्जित हो गए, सोचा ये पृथ्वी दो खंड हो जाती मैं उसके अंदर में समा जाता। इतने में एक गोपी ने कहा, ये जानती है कौन है, कृष्ण का कोई अनुचर होगा, दूत होगा। कैसे तुमने समझा, इसलिए समझा ये श्याम तो है, माने कृष्ण जैसे ही श्याम, ऐसे ही किशोर, कृष्ण से दो एक वर्ष छोटे हैं उद्धव जी, और कृष्ण का जैसा रूप रंग और बड़े मधुर स्वभाव इत्यादि वैसे ही, और कृष्ण ने आते समय अपनी बनमाला पहना दी, अपना पीतंबर भी पहना दिया, ये कपड़े भी पहना दिए, एकदम कृष्ण जैसे ही। गोपियां कहती हैं, कौन गोपियां कहती हैं, जो एक तमाल वृक्ष को देकर के कृष्ण समझ करके और उनका आलिंगन करती हैं, मैं को कृष्ण समझती हैं, कोई काले बादल को देकर के कृष्ण समझती हैं और तन्मय हो जाती हैं, आज ये गोपियां साक्षात कृष्ण के समान संभाव वाला ऐसे युवक को देकर के भी प्रेम ने उनकी रक्षा की, नहीं तो वो कृष्ण समझ करके आलिंगन कर सकती थी, इसलिए प्रेम उनकी रक्षा करता है। मर्यादा प्रेम की भी मर्यादा होती है, प्रेम अमर्यादित नहीं होता है। इसलिए एक गोपी कह रही है, देखो श्याम है किंतु श्याम नहीं, श्याम आछे बटे किंतु श्याम नहीं, श्याम है किंतु श्याम नहीं है, क्या है ये भ्रमर भी श्याम है, श्याम है किंतु श्याम नहीं है, तो ये श्याम तो है किंतु श्याम नहीं, कौन है, श्याम का दूत है, कैसे, उद्धव जी सुन रहे हैं सब बहुत दूर से कह रहे हैं श्याम नहीं है तो कौन है, श्याम का अनुचर, कैसे समझी, देखो आंखें भूल कर सकती हैं, हमारे नाके कभी भूल नहीं करेंगी, लाख प्रकार का गंध हो, बेली जमेली जूई और भी कमल का भी गंध हो, उसमें वो पीले पीले वो क्या होते हैं राधा जी के अंग, चंपक चंपक पुष्प हो और बेली के पुष्प हो, सभी मिला करके, किंतु उसमें कृष्ण का गंध जो होता है वो अलग ही तरह का होता है, हम समझ जाएंगे ये कृष्ण के अंग, ये जो आया है, ये जो फूल जो पहना है माला, इसमें कृष्ण के अंगों की गंध आ रही है, और ये जो कपड़े पहना है पीताम्बर, ये इसका नहीं है, उन्होंने उच्छिष्ट रूप में इसको जरूर पहना दिया है, इसलिए उसके अंगों से ये कृष्ण के अंगों की गंध आ रही है, इसलिए फूल नहीं हमारी हो सकती। उद्धव का ये धन्य गोपियां, मैंने नंद बाबा को देख करके मैं आश्चर्यचकित था, ये गोपियां तो उनसे भी दो अंगुल और ऊपर वाली हैं, वहां जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और बैठे, समय हो गया ठीक है, और 5 मिनट, बहुत लंबा प्रसंग है, मैं केवल एक भूमिका दे रहा हूं, अब यदि आऊंगा तो इसको एक दो श्लोकों को इसमें से सुंदर सुंदर आप लोगों को सुनाने की चेष्टा करूंगा, इसके सुनने के अधिकारी भी बहुत बिरले हैं, सुनाने वाले की तो बात ही क्या, मैं इस रूप में मैंने अपने गुरु जी से जो कुछ समझा उसका थोड़ा सा कुछ भाग देना चाहता हूं, मैं अकेले ही क्यों साधन करूं, आप सब लोगों को भी इस रस का कुछ पिला दूं, जैसे कि आप लोगों के जीवन में भी उनके प्रेम के प्रति लालसा एक जग उठे, यदि यह लालसा जग उठी तो हमारा साधन भजन एकदम ठीक है, और यदि लोभ नहीं हुआ भागवत पढ़ने पर भी इन प्रसंगों को सुन तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए उद्धव जी वहां पर गए, एक गोपी वहां पर थी, उन सब गोपियों ने लेकर के, एक मूल जो गोपी थी राधिका जी, भागवत में काश्चित लिखा, काश्चित मैंने क्या, परोक्ष रूप में कहा, मैंने कहा राम इधर आ जाओ, किसी लड़के का नाम है, एक ये डायरेक्ट कहना है, भागवत में ऐसे कोई प्रसंग नहीं लिखे गए, परोक्ष रूप में कहे गए, एक लड़का है, गले में वैजयंती माला है, पीतांबर पहने है, मधुर मधुर वेणु बजाता है, वृक्ष तक भी उसे आकर्षित हो जाते हैं, बोलो तो ये युवक किशोर कौन है,
कृष्ण है। इसी तरह से परोक्ष रूप में बतलाया गया, जैसे एक व्यक्ति हैं, वो बैठे हुए हैं, वो लाल कपड़े पहने हैं, लाल उनकी कमीज है ना? और शर्ट पहने हैं, केस यहां पर उनके हैं, हाथों में घड़ी है, और भी उनके लक्षण बतला दिए, नाम नहीं कहा। तो ये काश्चित कौन हुए? वो व्यक्ति हुए। इसी तरह से भागवत में समस्त सारे प्रसंग बतलाए गए हैं, बल्कि इसमें रस इस बोलने में अधिक है। इसलिए प्रेम छिपा करके घुघट के अंदर में ही रखना चाहिए, प्रकाशित करने से प्रेम रूप एकदम अंतरहित हो जाता है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, वो गोपी कोई सो रही थी, सोने की पुतली कमल के पत्तों पर, कमल के फूलों पर सेज पर सेज, उसके विरह के ताप से वो कमल झुर झुर हो गए थे। चंदन उसको लगाया गया था मोटा मलयगिरी का, और वो भी मलय एकदम चूर चूर हो गया, सूख गया। ये गोपी मन ही मन में देख रही है, ध्यायंती कृष्ण का अंग मिलन से जो मथुरा वाली हैं, यहीं से भाव नेत्र से देख रही हैं, जो वो बिना वो किशोरियों के रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। वो वहां पर एक फूल को छोड़ करके जैसे भ्रमर दूसरे फूल को प्यार करता, फिर तीसरे को, फिर वहां नहीं लौटता। यहां तक उसका यह भी ज्ञान नहीं रहता ये बिना गंध वाला ये फूल है, यह भी नहीं उसको होश रहता। इसी तरह से मथुरा में किसी किशोरी से मिलने का ध्यान करती हुई कुछ रोष से वो कुछ बोलने लगी, उठ करके बड़ी मुश्किल से बैठी और बैठ करके बतला रही। कृष्ण भौरे बन करके वहां पर पहुंचते हैं उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए, और उद्धव जी ठीक उसी समय में पहुंचते हैं, कृष्ण उसके पीछे पीछे भौरे का रूप धारण करके वहां पर पहुंचते हैं। राधा जी के चरण कमल ऐसे सुंदर मधुर हैं, इतने मधुर हैं, इतने सुगंधित हैं, इतना कोमल हैं कि मानो भ्रमर झंकृत करता हुआ उनके चरण कमलों में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा है मधु के लोभ से। राधा जी ने भाव नेत्र से देकर कहा, छुओ मत, मधुपकितो अबंधो मास पिसांग्री शपत्ना कुछ बिललित माला कंकुमस पाश्रु फेरना बात मधुपति तन माननी नांग प्रसादम जब सदस्य विडंबम जस्य दूत समित्रिक। कह रही है कैसे रोष भरी नेत्रों से कह रही है, न जाने कहां से उनको प्राण संचार हो गया। अरे मधु, दूर हो, दूर हो, अपवित्र होकर के हमारे चरण कमलों को छूने की धृष्टता मत कर,